मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 12 नवंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि अब आप सबसे 3 दिनों के बाद सोमवार को मुलाकात हो सकेगी, आप जानते हैं कि इस बीच में दिवाली का त्यौहार है, उसके लिए छुट्टियां घोषित हो गई हैं। बहुत से राज्यों ने कल भी छुट्टी घोषित की है, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी यही फैसला किया है कि अब सोमवार को ही आप लोगों से मुलाकात कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से दीपावली की बहुत बहुत और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार जिसे हम प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं, प्रकाश पर्व, और भारत में जो प्रकाश की अवधारणा है वह सीधे सीधे ज्ञान से जुड़ी हुई अवधारणा है। आप सोच कर देखिए कि एक ऐसे युग में जबकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा किताबें नहीं थी, ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं नहीं थी, स्कूल और कॉलेजेस भी नहीं थे, उस समय भी हमारे वैदिक ऋषियों ने जो प्रार्थना की है किसके बारे में की है? तमसो मा, अंधकार नहीं, मां का मतलब अर्थ होता है नहीं, तमसो मां, तमस नहीं, ज्योतिर्मय गमय, कि हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो, ज्योति की ओर ले चलो, गमय उधर की यात्रा हो, प्रकाश की यात्रा हो। कितनी बड़ी बात हमारे ऋषि मुनियों ने उस दौर में कही थी जबकि हमारे पास ज्ञान के कोई बहुत ज्यादा स्रोत नहीं थे, लेकिन जो जीवन का ज्ञान है उस समय भी मौजूद था, जो जीवन का दर्शन है वह उस समय भी था। तो यहां आप सीधे सीधे इस प्रकाश को विवेक से जोड़कर देख सकते हैं। और फिलहाल हम लोग जो बातें कर रहे हैं दोस्तों, वो उस यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं जब किताबें हमारी उंगली पकड़कर अपने साथ हमें ले जाती है। तो आइए आज हम लोग अब सीधे सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से किताबें हमारे लिए दवाइयों का काम करती हैं, और यह एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि सर्वोत्तम मेडिसिन है, एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आप किसी बीमारी के बाद प्रस्क्राइब्ड नहीं करते, ये क्योर करने वाली मेडिसिन नहीं है, सच पूछे तो ये बीमारी होने ही नहीं देती, ये इस तरह की मेडिसिन है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आप सबसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत से प्रिय श्रोताओं ने इसके बारे में जानना चाहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जो अपनी बात रख रहा हूं उसमें हमारे जो 3 दार्शनिक हैं उनका मिला जुला रूप है। आपने हमारे आचार्य भरत मुनि का नाम सुना होगा जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, उन्होंने नाटक के संदर्भ में अपनी बात कही थी। देखिए, नाटक का मतलब भी साहित्य ही है, कला ही है। इसके बाद ये हमारे भारत में हुए थे, फिर यूनान में अरस्तु हुए थे, अरस्तु फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी नाटक के बारे में ही अपनी बात कही, रंगमंच के बारे में अपनी बात कही। और ये जो यूनान के अरस्तु हैं और हमारे भारत के जो भरत मुनि हैं, लगभग आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन चूंकि इस सब दायरा हम बहुत लंबे अंतराल में देखते हैं तो काफी कुछ समकालीन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, काफी कुछ समकालीन है। और इसके बाद फिर आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, आप कह लीजिए फ्रायड, इन तीनों को मिला करके मैं अपनी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। कल मैंने कहा था कि हम जो बने हैं वास्तव में जो हमारी पहचान है वो हमारे विचार और भावनाओं से होती है। अब आप देखिए कि होता क्या है, हमारे दिमाग में पता नहीं कितने विचार उठ रहे होते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पाते, उसके पीछे चाहे जो भी कारण हो। कभी ऐसा लगता है कि अगर हमने ये विचार व्यक्त कर दिया तो सामने वाला नाराज हो सकता है, मारपीट हो सकती है या हमें दंड दिया जा सकता है। कभी कभी ये भी हमारी जो भावनाएं हैं, चूंकि भावनाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध समाज ने नैतिकता के नाम पर लगा रखे हैं, धर्म के नाम पर लगा रखे हैं, प्रशासन ने कानून के नाम पर लगा रखे हैं, जो जरूरी भी हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो हम बहुत सी अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते। होता यह कि बहुत सी भावनाएं और हमारे विचार ऐसे होते हैं कि जिन्हें शेयर करने के लिए हमारा कोई हमराज भी नहीं होता। देखिए कितना खूबसूरत शब्द है हमराज, ये दोस्त से बढ़कर होता है हमराज, हमराज जो हमारे सारे रहस्यों को जानता है। लेकिन क्या सच में सच्चा हमराज मिल सकता है जिससे आप अपने मन की सारी बातें कह सकें, अच्छी बुरी क्रूप सुंदर जो भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं सच सच बता सके। क्या सच में ऐसा हमराज हम सबके पास है? काश कि ऐसा होता, वह भी नहीं है। तो होता क्या है कि ऐसे विचार और हमारी ऐसी भावनाएं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो, वे हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। देखिए, मन में विचार उठ गया, मन में भावनाएं उठ गई, तो आप उन्हें दबा सकते हैं, उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। वो हमारे अवचेतन मन में जाकर के बैठती चली जाती हैं। अब वो अवचेतन मन में चली गई और बैठ गई और वही धीरे धीरे कुंठा का रूप लेते चली जाती हैं और वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित करती हैं और बड़े नकारात्मक रूप में प्रभावित करती हैं। बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट उनका हमारे ऊपर होता है क्योंकि हमने उसका दमन कर दिया। ठीक वैसे जैसे कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर आप उसे दबा देंगे तो वो सड़ गल करके वो फिर दुर्गंध ही देने लगेगी। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या उपाय है दोस्तों? इसीलिए जो अरस्तु है उन्होंने कैथारसिस की थ्योरी दी थी, कैथारसिस। और ये बात उन्होंने यूनानी नाटकों के संदर्भ में की थी। आपको शायद पता हो कि यूनान में जो नाटक खेले जाते थे, मैं आज से 2000-2500 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तो वो सब के सब जो नाटक होते थे वो ट्रेजेडिक होते थे। मतलब नाटक चलता रहता था और उनका अंत जो है दुखांत होता था। जैसे भारतीय फिल्में देखिए तो उनका अंत सुखांत होता है। कहानियां भी पढ़िए, अभी की बात नहीं, पहले की कहानियां पढ़िए, तो जो अंत होता है वो बड़ा सुख का होता है, आपको बड़ा सुकून सा देता है। लेकिन यूनान के साथ ऐसा नहीं था, वो दुखांत होते थे। तो अरस्तु ने जो बात कही वो ये है कि जब कोई दर्शक जब जाकर के रंगमंच पर, रंगमंच के कक्ष में जाकर के जब नाटक देखते हैं, तो जब नाटक खेला जाता है तो उन पात्रों के साथ वो हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, इस तरीके से करते हैं, वो नाटकों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। और बिल्कुल यही बात हमारे यहां के भरत मुनि ने भी कही थी, साधारणीकरण का उन्होंने सिद्धांत दिया था। अब आप देखें कि आपके मन में जो भी भावनाएं हैं, अब वहां दुखांत, आप नाटक देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, कुछ लोग सिसकियां भर रहे हैं, मतलब हालत यह होता था कि कुछ तो सही में चीख चीख के रोने लगते थे क्योंकि आप नाटक देख रहे हो, आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ सही हो रहा है और ये मेरे साथ हो रहा है। तो अरस्तु ने कहा कि जब दर्शक नाटक देख करके बाहर निकलते हैं तो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सारी जो भावनाएं हैं वो नाटक देखने के बाद व्यक्त हो जाती हैं, आंसुओं में बह गए, आंसुओं में सारे उनके जो दुख हैं, उनकी निराशा है, उनकी हताशा है, उनकी खीज है, वो सब के सब बह जाते हैं। तो जो दमन हुआ था देखिए अब वो बाहर निकल गया, आप हल्के हो गए। क्या इसने मेडिसिन का काम नहीं किया? दोस्तों साहित्य इस रूप में बहुत जबरदस्त मेडिसिन का काम करता है, बहुत जबरदस्त मेडिसिन का काम करता है। और अंत में बस ये लाइन कह के मैं खत्म करूंगा कि ये तो चलिए फिलॉसफी की बात है, व्यावहारिक स्तर पर मैंने इसको बहुत गहरे रूप में अनुभव भी किया है, इसीलिए इसके पक्ष में 100% मैं अपना मतदान करना चाहूंगा। आप सबके पास भी डेफिनेटली इसका कुछ न कुछ अनुभव तो होगा ही, नाटक के संदर्भ में न सही, फिल्मों के संदर्भ में होगा। तो मित्रों अब मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा। दीपावली की एक बार आप सबको फिर से बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।